ओम शांति। मोबाइल को शरीर से अलग कर देंगे सभी। एक राज्य में एक बार एक उत्सव था और उस उत्सव में एक नाटक का आयोजन हुआ और उस नाटक में एक 5 वर्ष की राजकुमारी का पार्ट एक कन्या करने वाली थी, परंतु ऐन वक्त पर वो बीमार पड़ गई। तो राजा और रानी को चिंता हुई, अब ये नाटक कैसे होगा। तो तुरंत रानी के मन में एक ख्याल आया कि उनका एक 5 वर्ष का राजकुमार है, क्यों ना इसी राजकुमार को राजकुमारी बनाया जाए, छोटे से बच्चे को राजकुमारी के ड्रेस पहनाया जाए और उसे ही प्रस्तुत किया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये आइडिया सबको बहुत अच्छी लगती है। तो तुरंत वो जो राजकुमार होता है उसे राजकुमारी के ड्रेस पहनाए जाते हैं, सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, सारे डायलॉग्स रटाए जाते हैं और वो प्ले होता है, वो नाटक होता है। और नाटक इतना सुंदर होता है और सबको वो राजकुमारी अर्थात राजकुमार इतना पसंद आता है, उसकी एक्टिंग, उसका चेहरा, सब कुछ बहुत तारीफ और बहुत स्तुति होती है। तो नाटक के बाद रानी सोचती है कि ऐसा मौका फिर ना आएगा, इसलिए वो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार को बुलाती है और उस राजकुमारी राजकुमार का एक चित्र निकालती है। उसको उस चित्रकार से कहती है इसका एक चित्र निकालो इसी वेश में, इसी कॉस्ट्यूम में। तो चित्र निकाला जाता है, वो चित्र भी सबको बहुत पसंद आता है। ये घटना पूरी हो जाती है, राजकुमार बड़ा होता है, 20-25 वर्ष का हो जाता है, युवा, बहुत सुंदर दिखने में, एक योग्य राजा के सभी लक्षण उसमें होते हैं। और एक दिन अपने राजभवन में ऐसे ही टहलते टहलते वो उस चित्र के सामने पहुंच जाता है जो कि अभी कहीं स्टोर रूम में रखी हुई थी, वो चित्र तस्वीर, और उसमें वो राजकुमारी का चित्र देखता है अर्थात राजकुमार का। और वो चित्र देखकर उसे वो राजकुमारी बहुत अच्छी लगती है, कितनी सुंदर राजकुमारी है। और फिर नीचे तारीख लिखी होती है, वो तारीख पढ़ता है तो फिर तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो सोचता है अब ये राजकुमारी भी मेरी ही उम्र की हो गई है इस समय। और धीरे धीरे उसे उस राजकुमारी से प्यार हो जाता है। कौन सी राजकुमारी से? तस्वीर में जो है। और फिर वो ढूंढना चालू करता है कहाँ होगी ये राजकुमारी इस समय, क्योंकि चित्र राजभवन में है तो जरूर इसी राज्य की होनी चाहिए, और अभी वो बड़ी हो गई होगी और मेरी ही उम्र की होगी। और वो उसे ढूंढने लगता है पूरे राज्य में, किसी को बताता नहीं है, ढूंढने लगता है चुपचाप, पर वो कहीं नहीं मिलती। रोज ढूंढने निकलता है पर वो नहीं मिलती, पर अंदर ही अंदर प्यार और गहरा होने लगता है, मोहब्बत, इश्क। रोज रोज ढूंढकर भी जब वो नहीं मिलती तो अब उदास होने लगता है, प्यार में घायल, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना भोजन, ना राजपाट, ना राजसी बातें, ना राजनीति, दिन रात उसी राजकुमारी का चिंतन, कहाँ मिलेगी, कहाँ ढूंढू, उसी के प्यार में खोया हुआ। तो वहां का जो मुख्यमंत्री होता है वो देखता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये राजकुमार तो पहले कितना इंटरेस्टेड था सब बातों में, अभी इसको भोजन में इंटरेस्ट नहीं, किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं, चुप चुप गुमसुम रहता है, अकेला अकेला रहता है, खोया खोया सा रहता है। तो वो उसको पूछता है राजकुमार को, क्या बात है? राजकुमार कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि ऐसी बातें प्राइवेट किसी को बताई थोड़ी जाती है, ये अंदर की बात है। तो वो कहता है कुछ नहीं सब ठीक है। मंत्री कहता है नहीं बताओ मुझे। तो वो कहता है मुझे एक राजकुमारी से प्यार हो गया है। मंत्री कहता है उसका नाम क्या है? कहता है नाम तो पता नहीं। किस राज्य की राजकुमारी है? वो भी नहीं पता। कहाँ रहती है? वो भी नहीं पता। फिर प्यार हुआ कैसे? तो वो कहता है चलो दिखाता हूँ और ले जाता है और वो राजकुमारी का छोटा सा चित्र दिखाता है। वो कहता है ये है, इससे प्यार हुआ है। तो मंत्री कहते हैं ये तो बहुत छोटी है। वो कहता है तारीख देखो, अभी ये मेरी उम्र की होगी। तो मंत्री तारीख देखता है, मंत्री थोड़ा बुजुर्ग है, और वो देखते ही उसे वो चित्र और वो घटना याद आती, क्योंकि उस उत्सव में और उस घटना के समय ये मंत्री भी था। और वो मंत्री उससे कहता है, पहले हंसता है और फिर उससे कहता है ये जिसको तुम देख रहे हो ये कोई राजकुमारी नहीं है, ये तुम ही हो। और उसको वो घटना सुनाता है कि कैसे जब तुम छोटे थे तो तुमको राजकुमारी बनाया गया था और तुम्हारी माँ ने ये चित्र खिंचवाया था। और जैसे ही वो सुनता है ये तो मैं ही हूं तत्वमसी धाव आठ डैट, तुम ये नहीं तुम वो हो। और जैसे ही वो सुनता है कि ये तो मैं ही हूं, यही मेरा असली स्वरूप तो ये है, उसका मोह, उसका इन्फैचुएशन, उसका वो क्रश, उसका वो प्यार, इश्क, मोहब्बत, उदासी एक सेकंड में विदा हो जाती है, गायब हो जाती है। शास्त्रकार ये कहानी सुनाते हैं ये बताने के लिए, जैसे ही चेतना जानती है कि मैं ये देह नहीं, मैं कुछ और हूँ, जैसे ही ये पता चलता है कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो मेरा स्वरूप है, ये वास्तविक स्वरूप नहीं, मेरा स्वरूप कुछ और है, मैं वो हूँ, thou art that, तुम ये नहीं, तुम वह शुद्ध पवित्र आत्मा हो, विशुद्ध आत्मा हो, परम पवित्र आत्मा हो। जैसे ही यह रियलाइजेशन होता है वो सारा उसका दुख अब तक का, वो उसकी खोज, गमगीन अवस्था सब सब खत्म हो जाता है और एक रियलाइजेशन की स्थिति आती है। जब तक ऐसा रियलाइजेशन ना हो तब तक आत्मा मोह के बंधन से, विकारों से, वासनाओं से और विषय सागर से मुक्त नहीं हो सकती। ऐसा झटका उसको मिलना चाहिए, ऐसा करंट उसको मिलना चाहिए। जब ऐसा धक्का मिलेगा तो आत्मा जो बेहोश पड़ी है, मूर्छा में है, उस मूर्छा से, उस स्टेट ऑफ डिल्यूजन, इल्यूजन, अनकॉन्शियसनेस से जागेगी। हम किसके प्यार में पड़े हैं स्वयं से पूछना है। जिसके प्यार में हम फंसे हैं, व्यक्ति है, वस्तु है, वैभव है, संबंध है, संसार का आकर्षण है, धन है, विकार है, काम वासना है, क्या है? स्वयं को जगाना, स्वयं की चेतना को जागृत करना, अंधकार से बाहर निकलना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधता। जब तक पूर्ण जागरण न हो जाए, जब तक गंतव्य तक न पहुंच जाए, रुकना नहीं है। हमें संपूर्ण जागरण की अवस्था में स्वयं को स्थित करना है। तो आज का विषय है, विषय सागर से क्षीर सागर। विषय सागर कौन सा है? सबसे पहले ये प्रश्न है। ओशन ऑफ वाइस, विकार बहुत से हैं, पर सभी विकारों में एक ऐसा विकार है जिससे आत्मा जीवन भर प्रयत्न करती रहती है, फिर भी पूर्ण रीति से नहीं छूटती। वो बीच बीच में एक नए नए रूप धारण करके आते रहता है, हर बार एक नया रूप, हर बार एक नई उत्तेजना, और वो है काम विकार का महासागर। ऋषियों ने, योगियों ने और तपस्वियों ने बहुत तप किया और अंततः यह निष्कर्ष निकाला सागर को पिया जा सकता है पर काम को वश में नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े पहाड़ों को गिराया जा सकता है परंतु काम को वश में नहीं किया जा सकता। जंगली हाथी को अंकुश लगाया जा सकता है परंतु काम को वश में नहीं किया जा सकता। विषैले सांप ने काटने के बाद भी किसी को शायद बचाया जा सकता है परंतु काम का सर्प जब काटता है तब बचाना मुश्किल है। वह ऋषि मुनि जो संसार छोड़कर चले गए और जंगलों में तपस्या करते थे, दिखाया है अप्सराएं आती थी। ये अप्सराएं कौन है? क्या वास्तव में ऐसी कोई अप्सराएं थी जो ऊपर से आती थी? अप्सराओं को क्या पड़ी है? बेचारे बूढ़े बड़े साधु, पतले दुबले, खाना नहीं खाते, कुछ नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते, कुछ नहीं, जंगल में चुपचाप तपस्या कर रहे। राजे महाराजों को छोड़कर अप्सरा उनके पास जाती है। ये अप्सराएं कौन है? दे आर बट द प्रोजेक्शंस ऑफ द माइंड, मन का ही प्रक्षेपण है। ऐसी कोई अप्सराएं कहीं से नहीं आई, मन में ही जो दमन किया है, दमित भावनाएं, वासनाएं, सप्रेस्ड पैशन बाहर प्रक्षेपित हो रहा है, प्रोजेक्शन हो रहा है उसका, और वही उनको दिख रहा है। ऊपर से कहीं से कोई नहीं आ रहा है। तो जब ऐसे योगी और तपस्वी, कंदमूल फल खाने वाले, संसार को छोड़ने वाले, जंगलों में रहने वाले, उनको भी नहीं छोड़ा, तो शहरों में रहने वाले योगी और माया नगरी में घूमने वाले योगी और तपस्वी आत्माएं क्या संपूर्ण सुरक्षित है? माना उनको भगवान न मिला और माना हमें भगवान मिल गया, परंतु इच्छाएं और तृष्णाएं और उत्तेजनाओं के जो नियम है वो सेम है। एक किताब है हिंदी में, संस्कृत में लिखी हुई, भरतरी वैराग्य शतकम। कितनों ने पढ़ी है? जिसने नहीं पढ़ी है उसको पढ़ना है। भरतरी वैराग्य शतकम, वैराग्य के ऊपर 100 श्लोक, एक एक श्लोक में शक्ति भरी है। उसमें एक जगह भरतरी सुनाता है कि मैंने संसार का त्याग किया, जमीन पर सोता हूं, कंदमूल फल खाता हूं, आकाश मेरा, धरती मेरा बिस्तर है, आकाश बिछोना, कड़ी तपस्या करता हूं, पर हे प्रभु ये काम से मुझे मुक्ति दिला। सेंट अगस्टीन, पश्चिम जगत के सेंट, उन्होंने लिखा है कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टीन में, आई स्लीप ऑन द बर्निंग सैंड, आई एम अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, आई हैव गिवन अप ऑल द सेंशुअलिटी एंड आई हैव गिवन अप ऑल द comforts and conveniences of this world, and yet, O Lord, and yet, O Lord, the lust burns my soul. And what shall I do? And help me, and save me, and I cry unto Thee, O Lord, come, and save me from this burning passion. Mama ridhaya kanja nivasa karakamadi khaladala bhanjanam. मेरे हृदय कुंज में निवास कर, कामादि खल दल भंजनम, ऐसी प्रार्थनाएं योगियों ने गाई, महात्माओं ने गाई, तपस्वियों ने गाई, तो जरूर कुछ तो बात है। एक साधु अपने प्रवचन में हमेशा कहता था कि बिल्कुल सिनेमा देखना नहीं चाहिए, और एक दिन वो कहता है मैं इतना जोर जोर से सबको कहता हूं फिर भी लोग सिनेमा देखने जाता है, कुछ तो होगा, मुझे भी देखना है, कोई मुझे भी तो दिखा दे कि आखिर है क्या। तो विषय सागर, काम का सागर, विकारों का सागर, और विकारों का बॉस, गुरु, गैंग लीडर काम है। काम से चालू होता है, कामना पूर्ण नहीं होती क्रोध आता है, कामना पूर्ण नहीं होती तो उसको पूर्ण करने के लिए ग्रीड बढ़ती है, लोभ आता है, और लोभ में जब विघ्न कोई डालता है और इच्छाओं में विघ्न कोई डालता है तो फिर मोह और प्रगाढ़ होता है, अहंकार और ज्यादा होता है, मेरी नहीं तो किसी की नहीं, मेरा नहीं तो किसी का नहीं, ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून सवार होता है। अगर ये व्यक्ति मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। व्यक्ति ऑब्जेक्ट बन जाता है, व्यक्ति ऑब्जेक्ट वस्तु बन जाता है, जो मुझे चाहिए, जिसकी मैं मालकियत करूं, जिसका मैं मालिक हूं, और सामने वाला समर्पण हो जाए, ऐसा भाव प्रकट होता है। जब इच्छा, तृष्णा, वासना, कामना, डिजायर फुलफिल नहीं होती तब, इच्छाओं का खेल और काम का खेल सूक्ष्म है, काम का साम्राज्य बहुत बड़ा है, कैसे इसको जीते, कैसे इससे मुक्ति पाए, क्या हो सकता है ऐसी मुक्ति संभव है। विवेकानंद से किसी ने पूछा कि आपने जो भाषण दिया था उसका इतना कैसे प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस सभा में तो बहुत बूढ़े बूढ़े लोग थे और अनुभवी लोग थे और बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स थे, ऐसा क्या था। और वो 10 मिनट का एक पेज का भाषण खाली, उन्होंने लिखा है इट वॉज बिकॉज ऑफ द अनब्रोकन सेलिबसी, आई हैव नॉट अलाउड माई माइंड टू हैव अ सिंगल सेक्सुअल थॉट इन माई लाइफ, such uncontaminated purity, such unbroken celibacy, such uninterrupted flow of energy manifests in divine power, and all powers are within the soul. The goal is to manifest this divinity. ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी ऊर्जा है, सबसे बड़ी शक्ति है। संसार में सबसे महान जो कार्य किए गए हैं ब्रह्मचर्य की स्थिति में किए गए हैं। हो सकता है वो ब्रह्मचारी सदा ना हो, परंतु उस कार्य के समय, उस महानता के क्षण में वो ब्रह्मचारी था। इसमें कवि, पोएट्स, स्कल्प्टर्स, मूर्तिकार, शिल्पकार, संसार के जो भी मास्टरपीसेस क्रिएट हुए हैं, उस अवस्था में क्रिएट हुए हैं। A.R. रहमान ने कहीं लिखा है कि when I have to compose a new music, जब मुझे कोई एक नया संगीत निर्माण करना होता है, मैं सब तरफ से अपने आप को डिटैच कर लेता हूँ, एक ऐसे स्पेस में, इनर स्पेस में पहुंचता हूँ जिसमें केवल मैं हूँ, और उस प्यूरिटी की स्टेज में वो नया संगीत मैं निर्माण कर सकता हूँ। वहां पर कोई इच्छा नहीं आती कि मेरा नाम हो जाएगा, ये इससे इतनी कमाई हो जाएगी, ये सारे विचार विघ्न है, बाधा है, क्योंकि ये विचार आएंगे तो उनके साथ इच्छाएं आएंगी, इच्छाओं से मुक्त डिजायरलेस स्टेट में मैं पहुंचता हूं, एक सॉलिट्यूड में, एक मौन में, और उस स्थिति में बैठकर नव संगीत की रचना होती है। इसलिए एक न मिले दूसरे से, नहीं तो कॉपी भी कर सकते हैं, दूसरों के संगीत को चुरा सकते हैं, परंतु नवीनता, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के लिए भी ऐसी प्यूरिटी की आवश्यकता है। कम से कम उस समय, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो विकार है और विकारों का सागर है, इससे हमें बाहर निकलना है। चार स्टेप्स है इस विकार से बाहर निकलने की। सभी अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे। पहली स्टेप है कंट्रोल ऑफ एनर्जी। वो जो ऊर्जा नीचे बह रही है, उस ऊर्जा को ऊपर उठाना और कंट्रोल करना, नीचे नहीं जाने देना। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, कंजर्व द एनर्जी, उस ऊर्जा का संरक्षण, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। थर्ड स्टेप, डाइवर्ट द एनर्जी, उसका फ्लो जो नीचे है वो वहां से डाइवर्ट करना। गंगा है, उसको रोकेंगे तो कुछ और ही होगा, उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, उसके फ्लो को, उसके प्रवाह को। नीचे बहेगी, शरीरों को जन्म देगी, ऊपर बहेगी, ओजस बनेगी, उर्ध्वरेता योगी, सहस्त्रार में बहेगी, और ऐसा योगी फिर जो कर्म करेगा वो महान ही होंगे, श्रेष्ठ ही होंगे। ऐसा योगी जो बोलेगा वो बोल साधारण नहीं होंगे, उन बोल के साथ प्यूरिटी की और ब्रह्मचर्य की एक ऊर्जा होगी, वो शब्द और वो प्यूरिटी की एनर्जी साथ साथ होगी, और वो शब्द शक्तिशाली होंगे। कोई कितना भी विकारी हो, उस हृदय को भेदने का सामर्थ्य उन शब्दों में होगा। वर्ड्स वुड बी चार्ज्ड विथ प्यूरिटी। तो तीसरा है डाइवर्ट द एनर्जी, और चौथा है सब्लिमेट, सब्लिमेशन ऑफ एनर्जी। अंग्रेजी का सुंदर शब्द है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अर्थात दबाना नहीं, सप्रेस करना नहीं, दमन करना नहीं, सब्लिमेशन अर्थात उदात्तीकरण। हिंदी में कहते हैं उदात्तीकरण, पवित्रीकरण, अध्यात्मिकरण, स्पिरिचुअलाइजेशन। वो एनर्जी बहुत पावरफुल है, उसको दबाया नहीं जा सकता है। जिस जिसने दबाया वो विक्षिप्त हुए, पागल हुए। संसार में जितने पागलखाने और सब पागलखानों में जितने लोग हैं उनकी स्टडी करो, तो पता चलेगा दमित काम वासना है। विदेश में एक, अमेरिका में एक ग्रुप था सन्यासियों का, फ्लैगिस्ट नाम था उनका, फ्लैगिस्ट। एक चाबुक रखते थे अपने पास, जैसे ही काम विकार का संकल्प उत्पन्न हुआ अपने आप को चाबुक से मारते थे, तब तक जब तक लहूलुहान ना हो जाए। खुद को सजा देते थे ताकि ये अभी हुआ अभी फिर नहीं करना। पर ये करते करते ऐसा हुआ, एक समय आया कि जितना मारते थे और जब खून निकलता था तब वो काम वासना और भड़कती थी। उल्टा ही परिणाम हुआ। फिर करने क्या गए थे और क्या हुआ? कंडीशन हो गया माइंड कि जिसको दबा रहे वही ज्यादा बन के निकल रहा है। ऐसे बहुत सारे मार्ग लोगों ने अपनाए हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य तो द्वापर से मशहूर है, प्रसिद्ध है, परंतु उससे छूट नहीं पाए, अथक प्रयत्न किए। ऐसी बहुत कम आत्मा है द्वापर से अब तक की, और वो बहुत गिनी चुनी है, और जो बहुत पावरफुल थी और तपस्वी थी केवल वही छूट पाए हैं। बाकी उधर जाकर भी, संसार छोड़कर भी फ्रस्ट्रेटेड। तो ये चार स्टेजेस है, कंट्रोल द एनर्जी, कंजर्व द एनर्जी, डाइवर्ट द एनर्जी, एंड फोर्थ सब्लिमेट द एनर्जी। अब कंट्रोल में आते हैं। कंट्रोल में आठ स्टेप्स है। किसको कंट्रोल, किसको वश में रखना है? हर वो चीज जो ब्रह्मचर्य का खंडन है उसको वश में रखना। और काम और ब्रह्मचर्य आठ बातों में खंडित होता है। इन आठों में से कोई भी एक बात किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी स्थान में अगर होती है तो वो प्यूरिटी का खंडन है। हम चर्चा ब्रह्मचर्य की कर रहे हैं, प्यूरिटी की चर्चा अलग है। प्यूरिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, परंतु उस प्यूरिटी का जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो ब्रह्मचर्य। क्योंकि इस फाउंडेशन को यदि हटा दो तो वो प्यूरिटी गिर जाएगी। भवन जो है प्यूरिटी का, इमारत जो है उसका शिला जो है, आधार स्तंभ, वो ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य ठीक ठाक है तो बाकी जो विकार है वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और ब्रह्मचर्य ही ठीक नहीं तो वो सब आते रहेंगे, चिड़चिड़ापन, उदासी, अनिद्रा, नींद ना आना, नींद ज्यादा आना। आज तक 1936 से लेकर 2018 तक इस यज्ञ से जो भी आत्मा बाहर गई है, ऊपर से कारण चाहे जो भी हो, झगड़ा हो गया, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, अंदर से हमेशा एक ही कारण रहा है, अपवित्रता। और अपवित्रता में भी बाकी नहीं ब्रह्मचर्य का खंडन। द रीजन इज ऑलवेज वन। और केवल इसी संस्था में नहीं, द्वापर युग से जितनी संस्थाएं आई अध्यात्म की, उन सभी संस्थाओं में जो पतन हुआ वो इसी कारण से हुआ। फादर्स और नंस, सन्यासिनी और सन्यासी, भिक्षु और भिक्षुणी, जहां जहां एकत्र थे वहां पर गिरना आरंभ हुआ। और वो कैसे, उन्हें भी नहीं पता चला, क्योंकि संबंध सेवा का था और सेवा का संबंध डिटियोरेट हुआ। फैमिलियरिटी बढ़ी और फ्रेंडशिप हुई और दोस्ती हुई, और वो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप सेंशुअल फ्रेंडशिप बन गई। चर्च में एक फादर थे जो कि बहुत सुंदर कविताएं लिखते थे और भजन लिखते थे और गान गाते थे जीसस क्राइस्ट का, अनन्य भाव से। और ऐसे ही व्यक्ति को वहां की एक नन से प्यार हो गया। वो प्यार इतना बड़ा कि सिर्फ ये भक्ति, ये बातें, ये भजन, ये चर्च की प्रोसीडिंग्स, ये इसमें इंटरेस्ट चला गया, ये बाइबल क्या वही 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 पढ़ते रहना, फिर उससे बात करना ज्यादा अच्छा लगता है। और बातें ज्ञान की करते हैं, ऐसे ही नहीं संसार की बातें करते, बातें भी ईश्वरीय प्रेम की ही करते हैं। पर ईश्वरीय प्रेम की बातें और सेवा की बातें करते करते फिर दूसरी बातें आने लगी, फिर और मोह बढ़ने लगा, आकर्षण बढ़ने लगा, और फिर दोनों भाग गए और दोनों ने शादी भी कर ली। और वो फादर एक दिन पेरिस के एक स्ट्रीट में रास्ते पर एक बग्गी जो होती है, बग्गी घोड़े वाली टांगा, उसमें बैठ के कहीं जा रहा था तो बाजू में एक स्त्री आके बैठती है और वो कोई लेखिका होती है और कवियत्री होती है, उसके हाथ में एक किताब होती है और वो एक कविता पढ़ने लगती है और उस फादर को कहती है देखो कितनी अच्छी कविता है, कोई भजन। तो वो सुनते ही ये फादर, मतलब भूतपूर्व फादर, रोने लगता है, आंसू आने लगते हैं, क्योंकि वो कविता उसी की लिखी होती है और बहुत ईश्वरीय नशे में लिखी हुई होती है, और जिसमें लिखा रहता है thy love the streams of thy unceasing mercy, झरने बह रहे तेरी कृपा के अनवरत, हे प्रभु, ऐसी वो कविता लिखी होती है, उसमें ऐसे कुछ शब्द होते, ओ धाओ फाउंटेन ऑफ लव, हे प्रभु तेरी अनवरत कृपा झरनों के माफिक बह रही है। तो वो रोने लगता है, एकदम से फ्लैशबैक होता है, एकदम से सारा वो जीवन दिखाई देने लगता है, कैसे वहां था पहले और ये क्या हो गया और कैसे मैं गिर गया और अब तक तो कह रहा था सब ठीक है। हमारे पास एक डॉक्टर है जो पहले ब्रह्मा कुमार थे, फिर गृहस्थ बने, अभी ज्ञान में नहीं है, पर वो कहते हैं हमारे बच्चे भी शिव बाबा के ही बच्चे हैं, उसी के दिए हुए हैं। तो वो महिला कहती है रो नहीं, देखो आज इसी सड़क पर पेरिस की परमात्मा कृपा के झरने अब भी बह रहे हैं, तब नहीं बह रहे थे, अब बह रहे हैं, यहां बह रहे हैं। और वो उसे एकदम से रियलाइजेशन होता है, और उसको रियलाइजेशन होता है मैं गिर गया हूं, और तुरंत उसी दिन उसी पल एक रूपांतरण, और वो फिर से अपनी उसी स्टेज पर जाता है। परंतु वो पहले वाली अवस्था तक तो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि अभी एक बंधन है। तो काम पर संपूर्ण विजय, एक किताब आपको बताई भरतरी वैराग शतकम, दूसरी किताब आप बता रहे हैं, सभी नोट करके रखेंगे, मुंबई में कहीं पर भी मिल जाएगी, स्वामी शिवानंद की प्रैक्टिस ऑफ सेलिबसी इंग्लिश में किताब है, उसका हिंदी अनुवादित किताब भी उपलब्ध है, चाहे यहां या फिर नेट से मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट से, ये दो बुक्स। तो ब्रह्मचर्य अर्थात आठ चीजों का किसी भी स्थान पर किसी भी जगह किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन ना हो, ये जब होगा तब कहेंगे फर्स्ट स्टेप है कंट्रोल। उन आठों में से सबसे पहला है, कईयों ने सुना होगा पढ़ा होगा, उनके लिए रिवीजन, जिन्होंने नहीं सुना नहीं पढ़ा वो नोट करके रखेंगे। सबसे पहला है दर्शनम, देखना, देखने की दृष्टि कैसी है, चमड़ी को देख रही है नजर या किसको, या आत्मा को। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है शरीर को देखना, शरीर को टच करना संकल्प से या नजर से भी अपवित्रता है, हाथ से नहीं संकल्प से और नजर से। तो सबसे पहली पॉइंट है दर्शनम, देखना, किस भाव से देखा जा रहा है, काला है गोरा है, काली है गोरी है, चमड़ी को देख रहे हैं या आत्मा को देख रहे हैं। 72 की अव्यक्त वाणी, कुमारों से मुलाकात अव्यक्त बाप दादा, शरीर साथ है, आगे की पॉइंट फुल स्टॉप, साथ में विश होता है फुल स्टॉप। सभी कुमार बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे आज से कि आज के बाद केवल मस्तक मणि को देखेंगे, सांप को नहीं। वो जो संसार का सांप है वो अगर काटता है तो बचाया जा सकता है आईसीयू में वेंटिलेटर पर डालकर और बहुत सारे इंजेक्शन और सब देकर, पर विकार का सांप जब काटता है तो बचना मुश्किल है। इतना भयंकर सांप है, उसको शत्रु को जान लेना है हमेशा और कम नहीं समझना है, क्योंकि जिन्होंने अपने शत्रु को बहुत छोटा समझा, शक्तिहीन समझा, वो फंस गए। क्यों नहीं तो 40-40 साल ज्ञान में चलने के बाद व्यक्ति को एक दिन विचार आता है कि मैं जाकर शादी करूं। 40 साल का ज्ञान, 40 साल की मुरलिया, 40 साल का योग कहां चला जाता है? 40 साल कोई कम वर्ष नहीं है। कौन खींचता है, कौन अपहरण करता है इंटेलेक्ट का, कौन हाईजैक कर ले जाता है बुद्धि? देखना। सन्यासी के लिए 3 नियम बताए हैं। कोई स्त्री अगर सन्यासी को चलते हुए दिख जाए, सहज दिखना स्वाभाविक है, पर उसी को दूसरी बार मुड़कर देखना इच्छा, तीसरी बार उसी को मुड़कर देखना वासना। मधुबन का उदाहरण है, हमेशा हम देते हैं, मनमोहिनी दीदी थे आंगन में, और एक भाई एक बहन थी, उसको पूछ रहे, बहन जी आप कहां से हैं? तो दीदी ने उसके कंधे पर हाथ लगाया और कहा, शादी करनी है क्या? तुमको क्या करना है, वो कहां से है? तुम अपने काम से काम रखो। What is that to you? पहला देखना, यहीं तक नजर हो बस। मस्तक मणि आत्मा है, मां है, शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेणि संस्थिताम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणि संस्थिताम्। या देवी सर्वभूतेषु प्रेम रूपेणि संस्थिताम्। ये जो दिखाई दे रही है सभी माँ है, जगत जननी है, जगदम्बाए है, उसी रूप से उनको देखना। सारी ब्रह्मा कुमारियां वही है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, देविया है। और संसार की सभी स्त्रियां इस समय अज्ञान में है, परंतु वो भी देविया ही है, वो भी मां ही है। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी शारदा देवी षोडशी पूजा की, उसको बिठाया, विवाह हुआ, और पहले ही दिन उनको पूछा रामकृष्ण ने शारदा देवी से, क्या तुम मुझे गिराने आई हो? पर वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, स्पिरिचुअलिटी में वो भी बहुत तपस्वी आत्मा थी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पुरुषार्थ में तुम्हारा सहयोगी बनने आई हूं। और उन्होंने उसकी पूजा की अपनी ही पत्नी की, मां के रूप में। और जहां पत्नी को ही मां बना दिया जाए तो विकार की भावना ही नहीं आएगी। महात्मा गांधी कभी श्रीलंका गए थे, कस्तूरबा उनकी पत्नी उनके साथ थे, वो उसको बा कहते थे। तो वो जो मंच संचालक था उसको लगा उनकी मां है, और उसने अनाउंसमेंट की, आज हमारे बीच में महात्मा गांधी आए, साथ में उनकी मां भी आई है। बा मतलब मां होता है। तो उन्होंने अनाउंस किया कि साथ में उनकी मां भी आई है। महात्मा गांधी ने अपने भाषण में फिर कहा, आपने जो कहा सही कहा, ये मेरी पत्नी थी, अब मेरी माँ ही है। माँ के संबंध में विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, बाबा के महावाक्य है। भाई बहन के संबंध में उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जिसको बहन बना दिया और जिसने उसको भाई बना दिया, विशेष भाई और विशेष बहन, तो विशेष बहन को विशेष सौगाते देना चालू हो जाता है, और विशेष भाई को विशेष टोलिया देना उधर से चालू हो जाता है, और विशेष भाई और विशेष बहन में लगाव उत्पन्न होता है, फिर उससे बात करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि विशेष भाई है। किसी को विशेष बहन नहीं बना देना, बहन ही रहने देना, विशेष बहन मत बनाना। देखना, अगर देखने में विकार है, बाबा ने कहा क्रिमिनलाइज, आईज को सिविल बनाओ। विवेकानंद स्टेज से उतरे और एक महिला उनके पास आई और कहती है कि मुझे आप जैसा हैंडसम पति चाहिए। उन्होंने कहा क्यों, तो वो कहती है मुझे आप, हम दोनों से फिर एक ऐसा ही एक बच्चा जन्म लेगा, और मुझे ऐसा बच्चा चाहिए आप जैसा, इसके लिए क्या आप विल यू मैरी मी। तो वो कहते हैं प्रपोजल इज गुड, बट टाइम बहुत लगेगा, कब शादी होगी और कब बच्चा होगा और कब वो बड़ा होगा, इससे अच्छा है तुम मुझे ही अपना बच्चा बना लो ना। अभी के अभी इंस्टेंट देखने को ठीक करना है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था नासिकाग्र दृष्टि होकर रखकर चलो, चलते समय यहां देखना वहां देखना, इसने क्या पहना उसने क्या पहना, ये क्या कहां जा रहा है वो कहां जा रहा है, बुद्धि भटकती रहती है, आंखें जहां जाती है द पावर फ्लोज। नासिकाग्र दृष्टि, नीचे देखो और चलो, ये अभ्यास है। इधर देखो उधर देखो, इसको देखो उसको देखो, ये सुंदर या असुंदर, ये काली ये गोरी, नीचे दृष्टि जमीन की तरफ एकाग्रता रहेगी, नहीं तो यहां से वहां तक पैदल चलने का जो डिस्टेंस और ट्रेन में बैठने का डिस्टेंस, जहां पर भी ट्रैवलिंग में आंखें कंट्रोल में हो, नहीं तो आंखों से ऊर्जा आकर्षित करती है। आंखों आंखों में किसी के देखो, आकर्षण उत्पन्न होगा। वो दिखाया है गुरु मच्छिंद्रनाथ, बाबा आता है ना, माया मच्छिंद्र का खेल मुरलियों में आता है, वो मच्छिंद्रनाथ कामपुर में पहुंचता है स्त्रियों की नगरी में, वहां की रानी तिलोत्तमा उसको कहती है, पहले तो उसको बहुत सताती है कि हमारे राज्य में आना ही नहीं, परंतु वो योगी है तपस्वी है, आ जाता है, उसको कुछ नहीं कर सकती। बाद में वो कहती है मैं हार गई, अब कृपया हमारे महल में चलो, तो वो कहता है हम तपस्वी हमने कहीं नहीं जाएंगे। वो कहती है आपको मैं निमंत्रण करती हूँ, आप मेहमान हो, हम पर कुछ तो कृपा करो। तो वो आता है जमीन पर सोता है, वो कहती है अरे रे जमीन पर आपके लिए ये इतना सुंदर बेड है उस पर सोइए। वो कहता है मैं नहीं सोऊंगा ऊपर, हमारा तो यही है। वो कहती है आप हमारे मेहमान हो, फिर वो मान जाता है। तो फिर वो कहती है अब मैं आपके पाव, तो कहता है बिल्कुल नहीं। वो कहते मुझे सेवा का अवसर तो दो, हमारा तो भी कुछ पुण्य बने, तो पाव दबाना भी चालू होता है, और धीरे धीरे शादी हो जाती और बच्चा भी हो जाता है। और उधर से वो आता है फिर उसका शिष्य गोरख, उसको तो धक्का बोलता है मेरे गुरुदेव क्या हो गया इनको, ये तो गृहस्थी जमा कर बैठे हैं, अब मैं इनको लेके ही जाऊंगा। पर वो संकल्प करता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने गुरु को ले जाऊंगा यहां से इस मायापुर से। तो बहुत सारे प्रयत्न दिखाए, वो ये करता है वो करता है, माया मच्छिंदर का खेल जिसको बाबा कहते हैं, वो ये करेगा वो करेगा, पर वो उसकी पत्नी बीच बीच में आती है हमेशा, कभी उसको जेल में डाल देती है गोरख को, कभी फिकवा देती है नीचे से, पर जैसे ही वो गोरख कहता है अलख निरंजन, वो मच्छिंदर का एकदम जागृति होती है, उसके पीछे जाने लगता है, फिर वो तिलोत्तमा बीच में आती है, अरे नहीं तुम्हारा बच्चा ये राज्य इसका क्या होगा, वो गुरु अपना सब भूल जाता है, तपस्या विश्व कल्याण, पर लास्ट में गोरखनाथ लेकर जाता है अपने गुरु को, बहुत बड़ी कहानी है, उसको लेके जाता है, जाग मच्छिंदर गोरख आया, और अपने गुरु को ले जाता है, और बहुत खुशी होती है उसको कि मैंने अपने गुरु को छुड़ा दिया। वो पहुंचते हैं लास्ट सीन कुटिया में, तो धक्का बैठता है उसका, उसके गुरु तो समाधि में बैठे हुए हैं, फिर ये कौन है, यहां पर भी गोरखनाथ और वहां पर भी मच्छिंद्रनाथ और यहां पर भी मच्छिंद्रनाथ। तो वो मच्छिंद्रनाथ उठते हुए और कहते हैं, वो जो भी तुमने देखा सब माया था, माया मच्छिंद्र का खेल, ये तुम्हारे शिक्षा के लिए था कि कैसे व्यक्ति फंस जाता है और कैसे उसको बाहर निकलना है, बाकी मैं तो यहीं खड़ा हूं। फिर वो दिखाया वो मच्छिंद्र और वो एक हो जाते हैं, ये सारा खेल था एक फार्स। तो आंखें, कंट्रोल ऑफ आईज, आईज को जितना हो सके नीचे रखना ही बहुत अच्छा है, नहीं तो भागती है इधर उधर, दौड़ती है, चंचलता है उसमें। पहला देखना, दूसरा स्पर्शनम, स्पर्श करना, हाथ लगाना, टच करना, ये टच जो है आकर्षण उत्पन्न करता है, बताया ना बाबा ने, तो कहा है नजर से और संकल्प से भी टच मत करो, टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन, गीता में लिखा है जो जो सुख टच से उत्पन्न होगा, जो जो सुख स्पर्श से उत्पन्न होगा अंततः दुख बनेगा, इंद्रिय इंद्रियों से मिलेगी दुख मिलेगा। और इस चमड़ी में ऐसा है क्या, कुछ भी नहीं, इस चमड़ी के उधेड़ दो इसको और देखो क्या है, हड्डियां मांस मलमूत्र, कहां है सौंदर्य, शरीर बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है वो, अगर इतना ही सौंदर्य का आकर्षण है तो जनरल वार्ड में हॉस्पिटल्स में जाओ सरकारी, देखो मरीज कैसे पड़े हुए हैं, कहां है सौंदर्य, एक बहुत बड़ी लिस्ट है हिंदी सिनेमा के फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों की जिनका अंत कैसे हुआ, पैसे देने वाला कोई नहीं था, हॉस्पिटल का बिल चुकतू करने वाला कोई नहीं था, और ये वो एक्टर्स थे जो अपने जमाने में टॉप मोस्ट थे, ब्लॉकबस्टर्स उनकी फिल्में, एक अभिनेत्री को तो वो ठेला होता है ना उस पे हॉस्पिटल से, जीटी हॉस्पिटल से उसमें लेके गए थे शमशान घाट, स्टडी करो कैसे डेथ हुई है लोगों की, मीना कुमारी से लेके बहुत सारे, कहां है सौंदर्य, देखने वाला कोई नहीं, लिस्ट है सुसाइड की, वो जो ऊपर से दिखाई दे रहा है और अंदर से फ्रस्ट्रेशन चल रहा है। तो टच बॉर्न हैप्पीनेस, उससे अलग हो जाना है। तीसरा है, संस्कृत में कहते हैं केली, अर्थात खेलना साथ साथ। एक स्त्री और एक पुरुष, वो कहते हैं इक्वालिटी, हम लोग साथ साथ, पर ये जो खेलना है केवल स्थूल खेलना नहीं है, ये एक दूसरा भी खेलना है, व्हाट्सएप वाला खेलना, एक मैसेज इधर से दूसरा मैसेज उधर से, ये खेलना भी एक खेल है, एक इधर एक उधर, एक उधर एक उधर, इसका उपयोग यदि ज्ञान योग और सेवा के लिए नहीं है, चिट चाट के लिए है, व्यर्थ की बातों के लिए, तो आकर्षण उत्पन्न होगा और गिरेगी आत्मा। इसके लिए ऑल डिजिटल फ्रेंडशिप्स लीड टू डाउनफॉल। हमारे पास एक कुमार थे, बहुत पावरफुल कुमार, डॉक्टर, पढ़ाई करने गए बाहर पीजी के लिए, प्रतिज्ञा करके गए थे अब आऊंगा वहां से बस और सीधा समर्पित। गए पीजी की सुपर स्पेशलिटी का कोर्स किया और वहीं पर फेसबुक पर एक ज्ञानी बहन ब्रह्मा कुमारी से दोस्ती हो गई फेसबुक पर और दोस्ती बढ़ गई। अभी आए थे, युगल बन गए, साथ साथ ज्ञान में चल रहे हैं। कई कई माँ बाप भी हैं, अपनी कन्याओं के लिए अच्छा सा पावरफुल ब्रह्मा कुमार उनको ढूंढ चाहिए, एकदम प्योर बीके मैट्रिमोनी, जो कि ध्यान रखे हमारी कन्या का, पर ब्रह्मा कुमार चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, ताकि साथ साथ चले, कुछ हो जाए तो सपोर्ट करें। सारे ये खेल व्हाट्सएप के डिजिटल वर्ल्ड के गिराने वाले हैं। अगला है प्रशंसा, स्तुति, किसी एक की ही स्तुति करना, वही अच्छा लगना, ये बहुत अच्छी है। मुरलियों में आता है, बाबा ये बहन बहुत मीठी है, ये बहन बहुत मीठी मुरली सुनाती है। बाप कहते हैं, बच्चे बहन मीठी नहीं, मुरली मीठी है। दादी ने अनुभव सुनाया था, जान की दादी ने हॉस्पिटल में, एक बार शायद जानते होंगे, एक भाई का कोर्स कराया और भाई बहुत अच्छा था और उसने कोर्स बहुत अच्छे से समझा, दादी बाबा पहुंची ब्रह्मा बाबा के पास और दादी ने कहा, बाबा ये भाई बहुत अच्छा है, एकदम धारणा वाला है, एकदम कल पहले वाली आत्मा है, एकदम पूरा कोर्स चुना सुन लिया और एकदम पक्का होने की तैयारी में ही है, बाबा इसको ना एकदम तीर लग गया है। बाबा ने कहा, तीर उसको लगा या तुमको? प्रशंसा करना बहुत अच्छी बात है, पर एक की ही प्रशंसा करना और एक ही अच्छा है और उसको कुछ हो जाता है तो दुख होना, और उसकी कोई निंदा करता है तो दुख होना, और उस एक ही बहन में लगाओ और उस एक भाई में लगाओ कि कुमार अच्छा है, ये बहन अच्छी है, सभी अच्छे हैं, किसी एक में मोह नहीं होना। अपने मोह को सार्वजनिक कर दो, सार्वजनिक मोह, इसमें भी मोह, उसमें भी मोह, उसमें भी मोह, उसमें भी मोह, उसमें भी, सब में मोह, तो सेफ्टी है। हाँ, ये एक ही भाई बहुत ही अच्छा है, इसमें खतरा है। तो सबसे पहला है दर्शनम, दूसरा है स्पर्शनम, तीसरा है केली खेलना, चौथा है प्रशंसा, पांचवा है गुह्य भाष्य। ये आठ में से कोई भी चीज किसी भी स्थान पर किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में होता है तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। पांचवा गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, एकांत में बातें। युधिष्ठिर धर्मराज से पूछा गया, जब तुम तुम्हारी मां कुंती के साथ हो तो क्या तुम्हारा मन काम विकार से मुक्त है? वो कहता है, आई एम नॉट श्योर। किससे पूछा? अर्जुन से नहीं, भीम से नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर। और किसके साथ? जब तुम्हारी मां है तो। वो कहता है, आई एम नॉट श्योर। तो प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, लंबा लंबा घंटों घंटों बातें फोन पर, 3 मिनट से ज्यादा किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं, लिमिट 3 मिनट्स बस। हाँ वो दूसरी बात है फिर, सेवा का समाचार, कोई प्लानिंग है, कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देनी है वो, पर बाकी क्या कर रहे हो और क्या हुआ उधर और इधर क्या हुआ और इधर ये चल रहा है और उधर वो चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, इसका क्या हुआ उसका क्या हुआ, वो बहन कहाँ है, ये भाई कहाँ है, ये सब नॉनसेंस। 3 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, दैट्स इट। एंड एज फार एज पॉसिबल अवॉइड ऑल व्हाट्सएप टॉक्स, क्योंकि इसी में सारे मैसेजेस के द्वारा सब रिलेशनशिप बिगड़ते हैं। छठवां है संकल्प, एकांत में मिलने का संकल्प करना, प्लानिंग कि कहां अकेले में मिले, दुनिया से दूर थोड़ा पर्सनल बातें हो, शेयरिंग हो, अच्छे से बात करें, उसका संकल्प करना मिलने का। ऐसे संकल्प, ऐसी इमेजिनेशंस ब्रह्मचर्य का खंडन है। 7th अध्यावसाय अर्थात मिलना, वो जो संकल्प किया था उस संकल्प को साकार करना और प्रयत्न करना उसको साकार लाने का, उसे कहा गया है अध्यावसाय। ये 7 स्टेजेस है काम विकार के, 7 गांठे, और लास्ट है वास्तविक क्रिया, the act। These are 8 ties of ब्रह्मचर्य। इनमें से कोई भी चीज कभी भी हो रही है, किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में ब्रह्मचर्य का खंडन है। तो सबसे पहले हमने कहा कंट्रोल, कंट्रोल में ये सारी चीजों का कंट्रोल, और ये सारी चीजों का ट्रिगर्स है। अब उसकी एक दूसरी लिस्ट है ट्रिगर्स की, ट्रिगर्स ऑडियो हो सकता है, ट्रिगर कोई वीडियो हो सकता है, ट्रिगर फोटो पोस्टर कपड़े, ट्रिगर कोई मेमोरी हो सकती है, ट्रिगर डिप्रेशन हो सकता है, ट्रिगर थकावट हो सकती है, ट्रिगर बहुत सेवाएं कर ली और थकान हुई, वो भी ट्रिगर हो सकता है विकार का, ट्रिगर शारीरिक बीमारी हो सकती है, असहाय अवस्था हो सकती है। ये सूक्ष्म 2 प्रकार के ट्रिगर है, एक्सटर्नल ट्रिगर इंटरनल ट्रिगर, डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन का काम विकार से क्या संबंध है, थकान का काम विकार से क्या संबंध है, उदासी का काम विकार से संबंध है, आश्चर्य है। पर व्यक्ति जब इन चीजों में चला जाता है तो काम विकार ट्रिगर होता है, ये भी देखा गया है, साइकोलॉजी की स्टडीज है। जैसे कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग को छोड़ दिया, 5 साल हो गए हाथ नहीं लगाया, और अभी ऐसा कोई वातावरण ही नहीं है, कोई उसका साथी नहीं है जो स्मोक करता है, परंतु एक दिन अचानक उदास हो गया, कोई उसका साथी, उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई, एकदम डिप्रेशन में चला गया, वो डिप्रेशन अब ट्रिगर करेगा उस स्मोकिंग को जो उसने छोड़ दिया था। 10 साल हो गए विकार को छोड़े, और आज अचानक किसी ने कुछ बोल दिया कह दिया, सेवा में डिस्टर्बेंस हो गया, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन लोनलीनेस इलनेस सैडनेस एंड ट्रिगर ऑफ द लस्ट। इधर से स्टिमुलस उधर का होगा, क्योंकि अब खालीपन आया है, वैक्यूम क्रिएट हुआ, इस वैक्यूम को भरना है, किससे भरे, वो व्यक्ति नहीं है, वो वस्तु नहीं है, पैसे नहीं है, तो मेमोरीज है, मेमोरीज पीछे की मेमोरीज को खींच कर लाएगी, वो ट्रिगर हो जाएगा, लोनलीनेस अकेलापन डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन फेलियर, इंटरव्यू देने गए उसमें फेल हो गए, अब इसका काम विकार से क्या संबंध है, आश्चर्य। पर वो दुख की अवस्था, आत्मा निकलना चाहती है उससे, कैसे निकलेंगी, कोई साथी है नहीं बाहर, काम को ट्रिगर करेगा, उस काम भरना चाहेगा उसको, तो नो द ट्रिगर्स। अपने घर में ऐसे चित्र रखने हैं देवी देवताओं के जो देखकर पवित्रता का अनुभव। अभी कुछ दिन पहले मुरली चली थी ना, कोठरी बनाओ जिसमें शिव बाबा का चित्र रखो, देखते रहो, तो वो कोठरी वैकुंठ बन जाएगी। चित्रों का बहुत जबरदस्त प्रभाव है, पिक्चर्स, इमेजेस, पोस्टर्स, आर्ट, स्टिल आर्ट्स। अभी मन में शुद्ध संकल्प है, चित्र को देखने के बाद बाबा अपना ही उदाहरण बताते। कौन सी फिल्म देखी थी ब्रह्मा बाबा ने? सौभाग्य सुंदरी। सोचो वो जो पिक्चर देखा था उसमें जो बहन थी वो भी भाई था जो बहन का पार्ट कर रहा था। फीमेल तब फिल्मों में काम नहीं करती थी, कोई भाई ही होगा जो काम कर रहा था। अभी कौन काम कर रहे हैं? वो फिल्में, वो वीडियो, उनका क्या लक्ष्य है? विश्व कल्याण करना। वो जो धार्मिक मूवीज होती है उसका क्या लक्ष्य है? कि संसार में प्रेम फैलाना या कुछ और? व्हाट इज देयर स्पिरिचुअल कैलिबर? नथिंग। और फिर भी लोग पागल हैं, दीवाने हैं, फैंस हैं उनके लिए। उनके जीवन में क्या हो रहा है, अफेयर किसका क्या चल रहा है, उसमें इंटरेस्टेड है। ये सब से बाहर निकलना है, ट्रिगर है ये सारे। सिनेमा, मूवीज, ऑडियो, वीडियो, पोस्टर्स, पिक्चर, टेक्स्ट, डिप्रेशन, फेलियर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये आइडेंटिफाई करना है मेरा ट्रिगर क्या है। तो पहला है कंट्रोल, दूसरा है कंजर्व द एनर्जी, इस ऊर्जा का संरक्षण करना है, ऊर्जा का संरक्षण। उसके लिए लीकेजेस बंद करने पड़ेंगे। स्टोर करना है तो जो भी लीकेजेस है उसको बंद करने पड़ेंगे। और लीकेजेस है ये जो ट्रिगर्स बनाए बताए, ये लीकेजेस है बहुत सारे उसमें से, जहां से लीक होता है ऊर्जा। कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ सोचा, कुछ कल्पना की, लीकेजेस, होल्स, सब होल्स को, सारे लीकेजेस को, सारे ट्रिगर्स को बंद कर देना। उसके लिए जो बात कही, आइडेंटिफाई द ट्रिगर एंड स्टॉप देम। नहीं मतलब नहीं, सोचा और किया आज सुबह की मुरली, सोच लिया, संकल्प कर लिया, स्टॉप तो स्टॉप। संकल्प की देरी है बस। तो कंजर्व एनर्जी होगी बाय सीलिंग द लीकेज, बाय कीपिंग ऑफ द ट्रिगर्स। तीसरा डाइवर्ट। डाइवर्ट कैसे करेंगे? ऊर्जा नीचे बह रही है, उसको डाइवर्ट करना है बिजी रहने से। चार चीजों में बिजी रहना है, GYDS, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान की गहराई में जाओ, ज्ञान के चिंतन में जाओ, जो सुबह भी सुनाया उसमें बिजी रहना है। ज्ञान में, योग के नए नए प्रयोग में, सेवाओं में, तो वो ऊर्जा अपने आप डाइवर्ट होगी, नहीं तो विचार आएंगे वहां के। दयानंद सरस्वती को किसी ने पूछा कि आप अकेले रहते हो, ब्रह्मचारी हो, काम विकार नहीं सताता, आता नहीं क्या? वो कहता है रोज ही आता है, पर मैं उससे कहता हूं थोड़ा रुको, अभी मुझे थोड़ा लिखना बाकी है, मुझे भी थोड़ा काम करना है, इतना पूरा करता हूं फिर आना। और मेरा काम कभी पूरा होता ही नहीं, मेरा तो काम करना ही करना है। ऐसा एक दूसरा भी उदाहरण है हरिदास ठाकुर का, नाम आचार्य उन्हें कहा जाता है। हरे कृष्ण जो मूवमेंट अभी चल रहा है उसके बहुत पहले के चैतन्य महाप्रभु थे, उनसे भी बड़े थे वो, पर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बने। उसके जीवन में वर्णन है, वो मुस्लिम घर में जन्म लिया उन्होंने, परंतु कृष्ण का जप करते थे और सब जगह कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम फैलाते थे। एक मुसलमान शासक वहां था और उसको लगा सब उपाय कर लिए, ये तो कुछ होता नहीं। वो एक वेश्या के पास गया जिसका नाम हीराबाई था, और हीराबाई को कहा इस हरिदास को हीरादास बनाना तुम्हारा काम है अब, पैसे भी करके। और वो जो हरिदास होता है वो बैठा हुआ है, वो आती है उधर से नाच गाना रूटीन जो दिखाते हैं अप्सराएं और वो सब जो करते हैं ओल्ड टेक्निक, तो वो उसको कहती है आंख तो खोलो मेरे से बात तो करो। वो कहता है मैंने 300,000 बार रोज हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने का निर्णय लिया है, प्रण किया है, तो तुम रुको जब मेरा पूर्ण हो जाएगा तब मैं तुमसे बात करूंगा। तो वो सुबह आती है शाम तक रुकती है, बेचारी वहीं बैठे बैठे कुछ करेंगी कुछ करेगी, हलचल आवाज घुंघरू चुड़िया ताकि जागे थोड़ा ध्यान बढ़ जाए आंख खोले मुझे देखे वगैरह वगैरह। तो वो तो अपना हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पहला दिन वो मुसलमान शासक उस तक पहुंचता है, वो वेश्या के पास कहता क्या है व्हाट इज द प्रोग्रेस, तो वो कहती अभी रुको थोड़ा दूसरा मुझे 2 दिन और दो। दूसरे दिन फिर आती है, फिर से सुबह से लेकर रात तक वहां ही बैठी रहती है, कभी ऐसी कभी वैसी। और फिर वो तीसरे दिन फिर आती है, उसको बोर होने लगता है क्या करूं, तो हरे कृष्णा वो भी बोलने चालू करती है धीरे 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 धीरे, वो भी मंत्र जाप करती है धीरे धीरे। शाम होती है फिर और क्या करेगी, बोलना चालू करती है। अगला दिन होता है और वो बोलते 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 उसमें ही परिवर्तन आने लगता है, वो बोलते बोलते वहां का जो वातावरण है वो बदल जाता है पूरा, और दोपहर होने तक उसके चरणों में गिर जाती है, कहती है मुझे क्षमा करो मैं ये क्या करने आई थी। वो कहता है जाओ तुम्हारे पास जितनी प्रॉपर्टी है सब बांट दो और फिर मेरे पास आओ, क्योंकि वो सब पाप का पैसा है। वो जाती है सब कुछ गरीबों में बांट देती है, साध्वी वेश धारण करके उसके चरणों में आके गिरती है। और तब तक वो जो मुस्लिम शासक होता है उसके प्लानिंग ऐसा होता है कि सारे गांव वालों को दिखा दूं कि ये कितना बड़ा योगी है, इसका झूठा योग, क्योंकि 3 दिन तो पूरे हो गए, चौथा दिन है तो चौथे दिन पे गांव वाले देखेंगे देखो कैसे उसकी गोदी में पड़ा हुआ है, ये उसने वश में कर लिया होगा तब तक, हीरा दास बन चुका है। पर वो सारे गांव वाले शाम को आते तो देखते हैं ये तो हरे कृष्ण की गुणगान कर रही है, और वो बहुत बड़ी योगिनी बन जाती है। तो ये देखो कैसे परिवर्तन हो गया। तो बिजी रहना है कुमारों के लिए, बाबा ने कहा हार्ड वर्क करने वाले थकाने वाले जिसमें पसीना आ जाए ताकि सो जाओ तो तुरंत नींद आ जाए। द मोमेंट द हेड टचेस द पिलो स्लीप शुड टच द माइंड, तुरंत नींद आ जाए। बिजी ज्ञान में योग में और सेवाओं में, सेवाओं में भी नई नई मेथड्स, ज्ञान में भी नए नए चिंतन, योग में भी नई नई ड्रिल्स, तो एनर्जी डाइवर्ट होगी। और लास्ट है सब्लिमेशन ऑफ द एनर्जी, सब्लिमेशन अर्थात उदात्तीकरण पवित्रीकरण, प्यूरिफाई द एनर्जी। ये जो ऊर्जा है काम की जो नीचे बह रही है उसको ऊपर 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 उसकी दिशा डाइवर्ट कर दी, कंजर्व कर दिया, कंट्रोल कर लिया, और अब प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन के लिए थोड़े ज्यादा प्रयत्न चाहिए। जो भी चीजें सांसारिक है सबको स्पिरिचुअलाइज कर देना, सबको स्पिरिचुअलाइज कर देना जो भी संसार की चीजें हैं, और ये अपने आप आएगा। पहली 3 स्टेजेस हो जाए तो चौथी स्टेज सब्लिमेशन की अपने आप चालू हो जाएगी, फिर सब कुछ अध्यात्म ही दिखाई देगा। जैसे भक्तों ने कहा कि जहां देखो राम राम सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम ज्योरी जुग पानी, जहां जहां वहां राम है। तो ऐसी दृष्टि बना देना, झाड़ को देखा तो सृष्टि कल्प वृक्ष याद आया, एक छोटी सी स्पिरिचुअल एक्टिविटी हम करेंगे 7:30 बजे, कि जिसमें ये सारी बातें कैसे सब्लिमेट करना है उसके विषय में. आज इंटरनेशनल योग है, हम भूल गए थे, तो अभी 7 बजे से 7:30 बजे तक एक स्ट्रांग पावरफुल कमेंट्री के साथ सबको योग करना है. तो सब्लिमेशन में जो जो लौकिक है उसको अलौकिक बनाना है. सब्लिमेशन में संसारिक चीजें जो है उनको असंसारिक, गैर संसारिक, अलौकिक बनाना है. जो रिश्तेदार है, जो ऑफिस है, जो बॉस है, जो साथी है, जो जूनियर्स है, उन सब के प्रति दृष्टि बदल जाए. ये भी स्पिरिचुअल, ये भी स्पिरिचुअल, ये भी लाइट, ये भी लाइट. बीच में मधुबन में हम लोगों का जो ग्रुप है उसमें बहुत सारे इस तरह के प्रयोग किए गए थे, कैसे सब कुछ लाइट देखे. जैसे लाइट का अभ्यास, मैं आत्मा लाइट, शरीर लाइट, ये लाइट, ये लाइट, ये घर भी लाइट का, ये फैन भी लाइट का, सब कुछ लाइट लाइट देखना. रास्ते पे चल रहे जो लोकल ट्रेन है, सब कुछ लाइट ही लाइट है, सब लाइट. एक दिन ये अभ्यास, दूसरे दिन जो वस्तुएं दिखे उनका ज्ञान में क्या अर्थ है उसका अभ्यास. वो एक्टिविटी हम यहां करेंगे अभी थोड़ी देर में. तो सब्लिमेशन हम चाहेंगे इसके विषय में सब पढ़े, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है. सब्लिमेशन इट इज अ एंड रिजल्ट. ब्रह्मचर्य की सारी साधनाओं का एंड रिजल्ट है. जैसे दादियों की अवस्था है, जो बातें हमने यहां बताई वो बातें शायद उनको पता भी नहीं होगी और जरूरत भी नहीं है पता करने की, क्योंकि वो उस दलदल में कभी गए नहीं इस संसार के. उनका माइंड, उनका इंटेलेक्ट, जिस तरह की बाबा ने उनको पालना दी, वो संसार से परे ही रहे हमेशा. पर वो फर्स्ट जनरेशन थी यज्ञ की. अभी संसार और बहुत कुछ वातावरण में परिवर्तन है, तो ये चारों स्टेजेस रोज होती रहे. कंट्रोल, सोचते रहना. दूसरा, कंजर्व द एनर्जी बाय स्टॉपिंग ऑल द लीकेजेस. डाइवर्ट द एनर्जी बाय स्टेइंग बिजी. एंड फोर्थ, सब्लिमेशन इज स्पिरिचुअलाइजेशन. अभी एक 5 मिनट का गैप देते हैं.